पंचदशी ग्रंथ के अष्टम प्रकरण में कूटस्थ दीप प्रकरण है, इसमें विचार हम लोग कर रहे हैं। महावाक्य में लक्षार्थ में एकत्व होता है, वाचार्थ में भेद होता है। ईश्वर जीव में भेद है, लेकिन दोनों का स्वरूप जो लक्षार्थ है उसमें अभेद है। इसलिए पहले निर्धारण करना होता है कि लक्षार्थ क्या है, वाचार्थ क्या है। तो पहले जिसका एकत्व करना है ब्रह्म के साथ, उसका लक्षार्थ निरूपण किया जा रहा है कूटस्थ। तुम पद का अहम पद का लक्षार्थ कूटस्थ है। कूटस्थ को तो मानना ही होगा और वाचार्थ को भी मानना ही होगा, ये कह रहे हैं। यद्यपि कूटस्थ की सत्ता से चिदाभास की सत्ता है, लेकिन वहां तक बुद्धि नहीं जा रही है। ये बहुत ध्यान देने की बात है। कूटस्थ तो अपना स्वरूप ही है, लेकिन उसको जानेंगे कैसे? जानने का साधन जो हमारे पास जो है ना, वो तो नाम और रूप को विषय करेगा, लेकिन कूटस्थ तो नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, उसको जानेंगे कैसे? ये बड़ी समस्या है, सबके पास बड़ी समस्या है। श्रुति भी बताएगी तो कैसे बताएगी, आचार्य जी बताएगा तो कैसे बताएगा, और हम भी समझेंगे तो कैसे समझेंगे? तो यहां पर कहते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है ना, एक साथ दो का ज्ञान हो जाता है। हाँ, एक साथ क्या हो जाता है, दो का ज्ञान हो जाता है, साथे साथ हो जाता है। कैसे हो जाता है? अभी आप लोगों को पुस्तक दिख रही है, दिख रहे ना, तो पुस्तक के साथ क्या दिखाई दे रही है? प्रकाश दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? प्रकाश यदि न हो तो पुस्तक नहीं की दिखाई देगी, बराबर ना? तो प्रकाश से पुस्तक दिखती है, तो प्रकाश का पुस्तक का भी ज्ञान हो रहा है, और इसके साथ साथ हाँ प्रकाश का भी ज्ञान हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, है ना? तो और एक दृष्टांत समझ लो, जिस समय आप पुस्तक को देखते हो, पुस्तक का भान तो हो रहा है, इसके साथ साथ चक्षु का ज्ञान भी हो रहा है, होना चाहिए, वो नहीं है कि नहीं है, वो तो चक्षु भी जानी जाती है कि नहीं जानी जाती है? लेकिन पुस्तक को तो भाई चश्मा को तो सामने रख करके देख सकते हो, ऐसे चक्षु को निकाल करके रख करके देख सकते हो क्या? लेकिन ज्ञान तो होता है, चक्षु को निकाल करके देखने की जरूरत नहीं है। पुस्तक का दिखना ही चक्षु का दिखना है, और क्या? पुस्तक का दिखना ही चक्षु का दिखना है, है ना? जिस समय पुस्तक का ज्ञान हो रहा है, उस समय नहीं संशय होता कि भाई मेरी चक्षु है कि नहीं है, थोड़ा विचार करके मशीन लगा कर देखते हैं, है ना? ये नहीं होता है, ज्ञान तो हो ही जाता है कि नहीं? हाँ, चक्षु स्पष्ट, चक्षु से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, स्पष्ट दिखाई दे रहे है, वो बात अलग चीज है, लेकिन चक्षु है कि नहीं है इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होता है, हो गया कि नहीं? तो पुस्तक के ज्ञान के साथ साथ ही चक्षु का ज्ञान हो जाता है, बात पकड़ में है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से और एक दृष्टांत है, चित्र भी दिखाई देता है पर्दा भी दिखाई देता है कि नहीं। तो विचार कर लो, पर्दा दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, जिसमें चित्र है पर्दा भी दिखाई देता है। पर्दा ना दिखाई देवे तो चित्र ही नहीं दिखाई देगा, ओके कि नहीं। रस्सी में जो सर्प दिखता है उसमें रस्सी दिखती है कि नहीं दिखती है, एक बोले नहीं दिखती है। नहीं, हमने पूछा, जितना पूछा उतना उत्तर देना है ना, तब आपको वेदांत समझ में आएगा, ज्यादा उत्तर देने से समझ में नहीं आता। जितना प्रश्न पूछेंगे ना उतना उत्तर देंगे तो समझ में आता है, ज्यादा देने से मार्ग भी नहीं मिलेगा अधिक और समझ में भी नहीं आएगा। जिस समय आप सर्प को देखते हो रस्सी दिखाई देती है कि नहीं दिखाई, इतना हमने पूछा, नहीं दिखती है। तो नहीं दिखते तो रस्सी को हटा दो, फिर सर्प दिखे देगा। दिखाई देती है कि रस्सी ही है, ये ज्ञान नहीं होता आपको, ये बोल सकते हो, रस्सी ही है ऐसा ज्ञान भले ही ना हो है ना, लेकिन ज्ञान तो रस्सी का होता है इदम के रूप से है ना। यह सर्प है, वो यह अंश और है अंश जो है ना, यह तो अपरोक्ष हो गया, इसलिए यह बोल देते हो, है कहो यह कहो है ना, वो किसका है, रस्सी का है कि नहीं, तो वो दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है। इदम अंश दिखे न देवे तो सर्प ही नहीं दिखाई देगा, ऐसे समझ में ना। इसलिए यहां पर भी यही समझना है, जिस समय चिदाभास मालूम पड़ रहा है उसी समय सामान्य भी मालूम पड़ता है हाँ। चिदाभास जिस समय भास रहा है ना, घट का ज्ञान भी भास रहा है जिस समय, उसी समय सामान्य चेतन भी भासता है, ठीक है। इसलिए घट ज्ञान में जो सामान्य ज्ञान है ना, वही वास्तविक लक्षण है, ऐसे नहीं तो ऐसे सामना रख करके नहीं देख सकते उसको, इस प्रकार से समझना है। ये यहाँ पर वेदांत की प्रक्रिया है हाँ। तो इसको कहते हैं तो क्या, निधिध्यासन, ये क्या है हाँ, निधिध्यासन है हाँ। वाच्यार्थ से लक्षार्थ को अलग करोगे है ना, ये तो मनन की भूमिका यहाँ तक हो गई, मनन की भूमि सामान्य ही भाष रहा है और क्या भाई, इदम ना भाषे तो सर्प ही नहीं भाषे रहे हाँ, यही तो कह रहा हूँ, इसी की तो प्रक्रिया कह रहा हूँ आपको है ना। जिससे ये भास रहा है चिदाभास है ना, वो है सामान्य चेतन, वो अपना स्वरूप है, वो अपना स्वरूप है। तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, और कोई प्रक्रिया नहीं यहाँ पर। वेदांत में लक्षार्थों को समझना तो इसी से समझेंगे, साथे साथ समझेंगे, साथे साथ है ना। लेकिन इसको छोड़कर के उसको पकड़ना है, चिदाभास को छोड़कर के कूटस्थ सामान्य को पकड़ना है आपको। पकड़ सकते इसलिए कि हम वही है, इसलिए पकड़ सकते हो, ऐसा समझ में ना। तो कूटस्थ अपना स्वरूप है, इसलिए कूटस्थ का ज्ञान हो पाता है, कोई स्वरूप ना होता तो नहीं हो पाता है, और कोई प्रक्रिया नहीं है, है ना। तो ये प्रक्रिया समझ लो। तो इसलिए कूटस्थ ब्रह्म से अज्ञात घट भी भासता है और ज्ञात घट भी भासता है। तो बीज में जो चिदाभास आ गया, और चिदाभास इसलिए आ गया कि उसमें ज्ञातता धर्म आता है, ऐसा समझ में ना। घट में ज्ञातता धर्म है, तो ज्ञातता आने के लिए दो चाहिए, चिदाभास भी चाहिए। अब चिदाभास जहां पर हो रहा है, जिसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो वृत्ति भी चाहिए। तो ये बात बोल दिया नौवें श्लोक में है ना। देखो, आगे नौमत हो गया कल, आगे दसमा। भाई ये जो कहानी बता रहे हो इसका फलितार्थ क्या हुआ, क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष को बताते हैं दसमा श्लोक में, फलितम आह। फलित मतलब निर्णित, निष्कर्ष। फलित को बोलते हैं निष्कर्ष। आगे ज्ञातत्वं नाम कुंभेत, ज्ञातत्वं नाम कुंभेत चिदाभास फलोदय, चिदाभास फलोदय न फलं ब्रह्म चैतन्यम, न फलं ब्रह्म चैतन्यम मानात् प्राग् अपि सत्त्वतः। सत्व तो लिखे, तत्व तो लिखा है, सतत ठीक है। मानात प्राग अपि सतत, तो देख लो। अतः मतलब इसलिए भी, तो किस लिए? केवल बुद्धि वृत्ति से ज्ञातता नहीं आ सकती है, हो गए कि नहीं? केवल बुद्धि वृत्ति से ज्ञातता नहीं आ सकती है, अथवा केवल चेतन से भी ज्ञातता नहीं आ सकती है, इसीलिए, इसलिए अथकार तो हो गया। ज्ञातत्वम नाम, ये वेदांत शास्त्र में ज्ञातत्व कहो अथवा ज्ञातता कहो, पर्यावाचक शब्द है। ज्ञातता जो होता है, ज्ञातता किसको बोलेंगे? तो बता दिया, चिदाभास फलोदय। ज्ञातत्वम नाम किम? चिदाभास फलोदय। चिदाभास रूपी जो फल, फल फल, एक फल व्याप्ति वृत्ति व्याप्ति, मानते हो ना? पीछे आया फल व्याप्ति वृत्ति व्याप्ति, तो फल जो खाने पीना, ओ फल नहीं, यहाँ पे फल क्या है? पारिभाषिक शब्द, इसको कहते हैं पारिभाषिक शब्द, है ना? तो वेदांत में फल कहने से इसको लिया, चिदाभास, समझ में ना? ये कह रहे चिदाभास रूपी जो फल है, चक्षुरादि के द्वारा घटाकार पटाकार वृत्ति हुई। कहां पर वृत्ति हुई? अंतकरण में हुई, होगी कि नहीं? ये अंतकरण तो अकेला नहीं जा सकता है घट देश में, जैसे जल जो है ना खेती में ऐसा नहीं जा सकता, नाली बनाना पड़ता है ना, नाली बना देंगे जल चला जाएगा खेती में। इसी प्रकार ये नाली कौन है? इंद्रियां, चक्षुरादि इंद्रियां। इस नाली के द्वारा अंतकरण की वृत्ति चली जाएगी घट देश में, देश में चलेगी, है ना? घटाकार वृत्ति गई, घटाकार वृत्ति स्वच्छ होने से उस वृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब पड़ेगा, आगे समझ में ना? चेतन का प्रतिबिंब पड़ेगा, तो वृत्ति में जो प्रतिबिंब तो चेतन, वो क्या हो गया? चिदाभास। उस चिदाभास को कहते हैं फल, क्या कहते हैं? फल बोलते हैं, फल, फल चेतन हो गया, वही घट में है प्रकाश डालेगा, क्या डालेगा? हाँ, घट का भान हो जाएगा, मतलब घट भसेगा, भान हो जाएगा, इसलिए पीछे बता दिया आभास है ना घटः स्फुरेत, चिदाभास के द्वारा घट का स्फुरण होगा, घट भसेगा। और वृत्ति ने क्या किया? घटाकार वृत्ति ने अज्ञान को नष्ट किया, तत्रा ज्ञानम धिया नश्यत आभासेना घटस्पुरित, इसलिए वृत्ति का भी संबंध है घट के साथ, और वृत्ति प्रतिनिधि चेतन जो चिदाभास है उसका भी संबंध किसके साथ हुआ? घट के साथ। दोनों का कार्य अलग अलग हुआ। आया? तो वृत्ति ने अज्ञान को नष्ट किया, वृत्ति प्रतिनिधि चेतन चिदाभास ने क्या किया? घट का स्फुरण कर प्रकाश किया। इसी बात को बोलते हैं चिदाभास जो फल है वो फल उत्पन्न हो जाएगा घट देश में, मतलब प्रकाश हो जाएगा। किसका प्रकाश होगा? घट का प्रकाश हो गया, हो गया कि नहीं? ऐसा तो वो जो फल हुआ है ना, कहां पर? घट देश में हुआ है कि नहीं? तो उसको कहते हैं ज्ञातता, मतलब घट का स्फुरण होना, ये समझ लो। घट में जो स्फुरण हुआ घट का भासना, ये हो गया ज्ञातत्वम। तो ज्ञात धर्म कहां पर रहेगा? घट में रहेगा, घट में रहा। ये कह दिया कुंभे ज्ञातत्वम नाम, कुंभ में ज्ञातत्व आया, चिदाभास रूपी जो फल है वो उत्पन्न हो जाना, ऐसा है। अब कहते हैं भाई ये चिदाभास को काय को मानते हो? ये चिदाभास को फल बोल रहे हो, इसको क्यों मानते हो? ब्रह्म चैतन्य को ही मान लो, कूटस्थ चैतन्य को ही मान लो फल। कहते नहीं। क्यों नहीं? कहते मानात प्रागपि, मान हो गया प्रमाण, प्रमाण प्रमाण है ना। हाँ, घटाकार पटाकार वृत्ति हुई अंत चक्षु का संबंध होने पर घट के साथ, हो गया कि नहीं? तो घटाकार पटाकार वृत्ति से पहले कूटस्थ चैतन्य है कि नहीं है? है ना? क्या प्रमाण है करके? है करके क्या प्रमाण है? है ना? हाँ, घटाकार वृत्ति होने से पहले कूटस्थ चेतन है, इसमें क्या प्रमाण है? इसमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं भाई। और क्या? कूटस्थ चेतन ब्रह्म चेतन जो है ना उसके अस्तित्व में क्या प्रमाण है? प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रमाण की क्या आवश्यकता है? हाँ ना, वो स्वयं प्रकाश है वो। वृत्ति हो या ना हो, हम तो रहे ही, कूटस्थ ब्रह्म तो है ही। वो यदि ना होता फिर अज्ञात घट का भान कैसे होता? वो यदि ना होता फिर जो है उसका उसके विषय में संशय विपर्य होता, मैं हूं कि नहीं हूं, ऐसा तो होता ना, है ना? ये बात कह रहा है। देखो मानात प्राक अपि, मान हो गया प्रमाण, प्रमाण घटाकार वृत्ति, ये हो गया प्रमाण, हो गया कि नहीं? तो प्रमाण के द्वारा ज्ञान होता है, प्रमाण के द्वारा ज्ञान होता है कि नहीं? कौन सा ज्ञान होगा? घट का ज्ञान है ना। तो प्रमाण के द्वारा घट का प्रकाश, घट का ज्ञान हो रहा, उससे पहले ब्रह्म चेतन है कि नहीं? जो है, जो पहले से हो वो कभी कार्य होगा? जो पहले ना हो और बाद में हो उत्पन्न, उसको कहा जाएगा कार्य, हो गया कि नहीं? ये बात बोलते ब्रह्म चैतन्यम न फलम, ब्रह्म रूपी चेतन, ब्रह्म एवं चैतन्यम ब्रह्म चैतन्यम, ऐसा समझना है। ब्रह्म रूपी जो कूटस्थ चैतन्य वो फल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? हेतु दे रहे मानात प्रागपि सत्वतः, प्रमाण की प्रवृत्ति होने से पहले, घटाकार वृत्ति होने से पहले उसका अस्तित्व तो है ही। किसका अस्तित्व? हाँ, कूटस्थ चेतन का अस्तित्व है। किसका अस्तित्व नहीं है? चिदाभास, चिदाभास का अस्तित्व नहीं है, है ना? इसलिए चिदाभास को कहा जाएगा फल, कूटस्थ ब्रह्म चेतन को फल नहीं कहा जाएगा, ये सिद्धांत हुआ। ठीक है, थोड़ी सी देख लो श्लोक में आया ना अतः है ना, अतः मतलब इसलिए, इसलिए मतलब किस लिए, किस लिए को पहले समझना पड़ेगा ना। ये बोलते हैं टीका में यतमल क्योंकि केवलाया बुद्धेर ज्ञातत्व जनन असमर्थत्तम। केवल बुद्धि हो, केवल बुद्धि हो, केवल बुद्धि मतलब क्या ना हो, चेतन ना हो, चिदावास ना हो, चिदावास से रहित यदि बुद्धि हो है ना, तो ज्ञातता धर्म आएगा घट में नहीं है। पीछे बता दिया भाई है ना, कि भाला भाला हो, भाला के अग्रभाग में यदि लोहा ना हो तो किसी का पेट को फाड़ सकता है कोई, उसके आगे लगा दो नोक लोहा लगा दो फाड़ लेगा वो। इसी प्रकार बुद्धि वृत्ति है ना, भाला के डंडे की तरह हुआ बुद्धि वृत्ति, वो ज्ञानता धर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसी बात कह रहे केवलाया बुद्धिर ज्ञातत्व जनन असमर्थत्तम, ज्ञानता रूपी धर्म को उत्पन्न करने के लिए वो असमर्थ है। कौन असमर्थ हुई, केवल बुद्धिवृत्ति, चिदाभास से रहित बुद्धिवृत्ति समर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए अतः, अतः बोल दिया, इसलिए कुंभे चिदाभास लक्षणस्य, कुंभ में घट में चिदाभास रूपी जो फल है, चिदाभास रूपी जो फल है, फलस्य उत्पत्तिरेव, ये फल की उत्पत्ति होना, फल की उत्पत्ति होना यही ज्ञातता धर्म है और दूसरा कुछ नहीं है ना। ज्ञातत्वम नाम प्रसिद्धम, कहां पर प्रसिद्ध हुआ, ये किस शास्त्र में प्रसिद्ध हुआ, वेदांत शास्त्र में प्रसिद्ध है भाई, दूसरे शास्त्र में थोड़ी जानेंगे है ना, कि चिदावास रूपी जो फल का उत्पन्न होना इसको कहते हैं फल, ये तो वेदांत शास्त्र में समझा जाएगा ना, दूसरे में नहीं समझा जाएगा, ओके कि नहीं। जैसे हमने बोल दिया गुण, गुण शब्द, गुणा शब्द, तो गुणा शब्द सांख्य में, योग में, वेदांत में क्या होते हैं, गुण सत्य गुण रजगुण तमगुण, ये वेदांत में हुआ ना, वेदांत में सांख्य में योग में। और न्याय पढ़ोगे तो वहां पर गुण क्या होगा है ना, 24 गुण को वहां पर गुण कहा जाएगा, तो 24 गुण न्याय में प्रसिद्ध है, वेदांत में प्रसिद्ध है क्या वेदांत में प्रसिद्ध नहीं होगा, हो गया ना। और व्याकरण पढ़ोगे भाई, व्याकरण वहां पर गुण ये सब नहीं है, अदैंग गुण है वहां पर अकार एकार ओकार उसको गुण बोलते हैं, वो तो वो व्याकरण में प्रसिद्ध हो गया, ये पारिभाषिक शब्द हो गया, है समझ में ना। इसी बगैर नदी किसको बोलते हैं, नदी, नदी गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी, हाँ इसको नदी कहेंगे ना, हाँ लेकिन व्याकरण में ये सब नदी नहीं है, ये गंगा नदी नहीं है व्याकरण में फिर क्या है, युस्त्राख्यो नदी, वहां पर दीर्घ इकार दीर्घ उकार जो है ना, हाँ उसको कहते हैं नदी, ये देखो नदी, ये प्रसिद्ध हो गए कि नहीं, इसको कहते हैं पारिभाषिक शब्द, इसलिए यहाँ पर बोलते हैं प्रसिद्ध। ज्ञातता नाम जो है प्रसिद्ध वेदांत में हुआ, चिदावास रूपी जो फल है उसकी उत्पत्ति हो जाना ये हो गया ज्ञातत्व अथवा ज्ञातता। आगे टीका में, ननु अथापि चिदावासो न कल्पनीय, कहते हैं भाई चिदावास की कल्पना काय के लिए करते हो, चिदावास की कल्पना मत करो, टीका पढ़ रहे है ना, हाँ चिदाभास न कल्पनीय क्यों नहीं करेंगे भाई, कहते ब्रह्म चैतन्य सेवा फल से सद्भाव, भाई ब्रह्म चैतन्य तो है ही, ब्रह्म चैतन्य तो है ही ना, तो इसी को ही फल मान लो, इसी को ही क्या मान लो, फल मान लो। तो श्लोककार ने क्या कहा, न फलम ब्रह्म चैतन्यम, ये श्लोक कौन लिखा, अरे भाई श्लोक जो ना दसवां श्लोक कौन लिखा, हाँ स्वामी भारती तीर्थ, उसको नहीं भूलना चाहिए, स्वामी भारती तीर्थ है तो इसलिए बोल दिए कि ब्रह्म चैतन्य जो फल नहीं हो सकता है। टीका है, ब्रह्म चैतन्यम फलम घटादि स्फुरणम न भवती, घट आदि का जो स्फुरण हो रहा है ना, उसको ब्रह्म चैतन्य नहीं कहा जाएगा। बात पकड़ मई, घट का जो भान हो रहा है ना, वो ब्रह्म रूपी चेतन नहीं है। वो ब्रह्म रूपी चेतन अलग है, ब्रह्म रूपी चेतन अलग। हाँ ऐसा है। हाँ भले ही ब्रह्म चैतन्य के बिना घट का स्फुरण नहीं हो सकता, लेकिन घट का जो स्फुरण होना वो ब्रह्म रूपी चेतन नहीं है। बड़ा कठिन काम है कि नहीं, है ना? ऐसे पर्दे के बिना चित्र नहीं दिखेगा, लेकिन चित्र पर्दा नहीं हो सकता। ऐसा समझना पड़ता है। ये वेदांत में सब उल्टा जैसा लगता है। वेदांत जो है ना, यहाँ ये उल्टी विद्या है वेदांत। उल्टी हाँ जी, ऐसा होता है, इसलिए बोल दिया। तो ब्रह्म चैतन्यम फलम घटादि स्फुरणम, है ना? ये ब्रह्म चैतन्य नहीं है घट का जो स्फुरण हो रहा है ना। बहुत कुतः, क्यों नहीं हो सकता है? तो युक्ति बताना पड़ता है ना, इसलिए श्लोक में बता दिया मानात प्राग अपि सत्तत्व। इसका अर्थ लिखते हैं मानात प्राक अपि, ये श्लोक में आया मानात प्राग अपि। कभी कभी श्लोक को भी देखना पड़ता है ना। तो कहते मान क्या है जानते हैं? प्रमाण। मान शब्द का अर्थ प्रमाण है ना। मांग धातु ज्ञान अर्थ में है। लूट प्रत्यय करेंगे तो माना हो जाएगा, आप प्र उपसर्ग लगा देंगे तो प्रमाण हो जाएगा, है ना? ऐसा होता है। तो मान का अर्थ प्रमाण। प्रमाण प्रवृत्ति है, प्रमाण की प्रवृत्ति से पहले भी। प्रमाण क्या है यहाँ पर? चक्षुरादि नहीं लेना है, चक्षुरादि से घटाकार वृत्ति, उसको प्रमाण शब्द से लेना है, है ना? प्रमाण शब्द से किसको लेना है? घटाकार पटाकार वृत्ति को ले लीजिए। उससे पहले भी पूर्वम अपि विद्यमानत्वात्, वो तो विद्यमान है ही, वर्तमान में है ही, है ना? घटाकार वृत्ति से पहले ही वो है ही। कौन है ही? ब्रह्म चेतन तो है ही, ब्रह्म चेतन तो है ही, है ना? ऐसा है। तो एक कह दिया, और फल तो उसको कहा जाता है भाई जो पहले ना हो और बाद में हो, जो पहले ना हो और बाद में हो, उसको कहा जाएगा फल कार्य, हो गया ना? जो पहले ना हो और बाद में हो गया ना? ऐसा है। इसको बोलते फलस्य तो तद उत्तर कालीनत्व नियमात, ये नियम होता है ना। फलस्य तद उत्तर, तद उत्तर कारण, कारण के उत्तर काल में जो रहेगा उसको तो कहा जाएगा ना कार्य। और कार्य की उत्पत्ति से पहले जो रहे उसको क्या बोलेंगे? कारण। हाँ, कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम, कार्य की सत्ता आने से पहले ही जो रहे वो होगा कारण, हो गए कि नहीं? और ये भी समझ लो, है ना, जो पहले ना हो और बाद में हो, है लेकिन वो ऐसा ही दिखाई देता है, वास्तविक होता है। हाँ प्रातितिक होता है। चलो वो तो बाह्य प्रसंग है, वो तो लंबा हो जाएगा बोलेंगे। तो फलस्य तो तद उत्तर कालीनत्व नियमात, तब से क्या लेंगे? कारण। कारण के उत्तर काल में जो रहेगा वो कौन होगा? फल, वो हो जाएगा फल। ये नियम होता है। इति भाव, ऐसा भावार्थ हो गया, तात्पर्य हो गया। किसका तात्पर्य? श्लोककार का, श्लोक का तात्पर्य हो गया। तो ये वेदांत का सिद्धांत हो गया, है ना? चिदाभास रूपी जो फल है उसकी उत्पत्ति हो जाना, ये हो गया ज्ञातता। और फल किसका नाम हो गया? चिदाभास। इसको नहीं बोलना, चिदाभास को कहते हैं फल। वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य, इसका नाम हो गया फल। कहीं के फल चेतन नहीं बोल देंगे, कहीं के फल इतना ही बोलेंगे, कहीं के फल चैतन्य भी बोलते हैं। तो ये तो सिद्धांत हो गया। इस सिद्धांत को परिपुष्ट करने के लिए एक शंका उठा रहे हैं भाई, शंका है ना? एक सुरेश्वराचार्य हुए, भगवान भाष्यकार के चार शिष्य है ना मुख्य, उनमें से एक शिष्य है सुरेश्वराचार्य, उसका नाम पहले था मंडन मिश्र और शास्त्र अर्थ में परास्त हो गए, फिर बाद में जो है भगवान भाष्यकार के शिष्य बन गए, उसका नाम हो गया सुरेश्वराचार्य। ऐसा जो मैं न, तो उन्होंने एक वार्तिक लिखा है, दो उपनिषद के ऊपर वार्तिक लिखा है, ये तो बृहदारण्यक उपनिषद के ऊपर, दूसरा है तैतरीय उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखा, बाकी के ऊपर काहे के लिए नहीं लिखा, जब भगवान ने तो आदेश दे दिया भाई लिखो तुम सब, है ना, फिर लोगों को बाकी शिष्यों को अच्छा नहीं लगा, है ना भाई, ये तो गृहस्थ थे अभी सन्यासी बने हैं और लिखेंगे तो पहले तो कर्मकांडी थे ना, वो पहले कर्मकांडी थे वो, तो सर्वसाई में कर्मों को ही लगा देगा, वो कर्मों का प्रतिपादन हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी फिर, ठीक है, इसलिए कैसे लिखेंगे ये, है ना, तो ऐसा संशय हुआ बाकी शिष्यों में, तो भगवान भाष्यकार समझ गए, है ना, तो बोल दिया कि नहीं तुम जो है मेरी शाखा के ऊपर लिखो, वो तो शिष्य है, शिष्य तभी गुरु के ऊपर लिख सकता है, इसलिए भगवान भाष्यकार का जो शाखा है ना, भगवान भाष्यकार की शाखा है, जानते हैं तैतरीय शाखा, तैतरीय उपनिषद के ऊपर लिखा हुआ ना भारत लिखा, और इनकी शाखा है काणव शाखा, सुरेश राचर जी काणव शाखा, काणव शाखा की उपनिषद है बृहदारण्यक, इसलिए काणव शाखीय बृहदारण्यक उपनिषद के ऊपर भारतीय लिखा, इसलिए दो उपनिषद में भारतीय मिलता है, हाँ एक शाखा अपनी हो गई, दूसरी शाखा गुरु की हो गई, है ना, है भारतीय टीका भी नहीं है, थोड़ा सा अलग होता है ना, भारतीय उसको बोलते हैं, तो उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम आहो वार्तिक अज्ञा विचक्षण, जो कहा गया है उसके ऊपर भी चिंतन जिसमें करेंगे, धर्मेन जैसे मान लो व्याकरण की बात है, व्याकरण तो लिख दिया पाणिनि महर्षि ने, जितना लिख दिया उसके ऊपर भी चिंतन किया है कात्यायन ऋषि ने, उक्त कह दिया पाणिनि ने जो लिखा उसके ऊपर चिंतन, और जो नहीं कहा है अनुक्त, पाणिनि ने जो नहीं कहा है उसके ऊपर भी चिंतन, हाँ पहले हाँ उक्त अनुक्त, तीसरा है दुरुक्त है जिसमें संशय जैसा लग रहा है, जिसमें कोई दोष है ऐसा जैसा लग रहा है, हो गया कि नहीं, उसके ऊपर भी चिंतन हो गया, तीन बातें, तीनों का चिंतन जिस ग्रंथ में हुआ है उसको बोलते हैं वार्तिक, कौन बोलेगा वार्तिक, हल चराने वाला बोलेगा वार्तिक, जो वार्तिक को जानता है कि इसको कहते हैं वार्तिक, विद्वान ने बोलेगा, पढ़ने वाला बोलेगा, इसलिए वार्तिक का ज्ञान विचक्षण हो गया, ऐसा समझे ना, ठीक इस बार यहाँ पर समझ लो, है ना, भगवान भाष्यकार ने जो कहा है ना, उसके ऊपर चिंतन किया उन्होंने, इसलिए उक्त, जो नहीं कहा है अनुक्त, उसके ऊपर भी चिंतन किया है, और जिसमें दोष तो नहीं है, भाष्यकार में तो कोई दोष होगा नहीं, लेकिन किसी को दोष जैसा लगता है ना, संशय हो सकता है, उसके ऊपर भी चिंतन कर दिया, तो जिस ग्रंथ में ऐसा तीनों के ऊपर चिंतन किया गया हो उसको कहते हैं वार्तिक ग्रंथ, हो गया ना, ये है, तो ये ले लीजिए, वार्तिक कार का जो है उसके ऊपर कोई दिखाता है, ये शंका पहले करता है, उनको विरुद्ध जैसा लगता है, वार्तिक कार ने जो कहा है वो थोड़ा अलग जैसा कहा है, हाँ इसलिए शंका उठा रहे, शंका को दिखा करके फिर समाधान करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी देख लो, ननु इदम पराकर्थ प्रमेयेषु, ये वार्तिक कार ने कहा सुरेश्वराचार्य ने, है ना, वार्तिक को आगे दिखाएंगे श्लोक में, ग्यारहवां श्लोक जो है ना ये वार्तिक है, इत्यादि सुरेश्वर वार्तिक विरुद्धां, आपने अभी क्या बोला दसवां श्लोक में, चिदाभास रूप जो फल है, चिदाभास को कहते हैं फल, हो गया कि नहीं? ये आपका सिद्धांत हो गया भाई। आपके प्रामाणिक व्यक्ति है सुरेश्वराचार्य, उसमें तो उसने तो वार्तिक में ऐसा कहा नहीं है, ये शंका है यहाँ पर। देखो, इति सुरेश्वर वार्तिक विरुद्ध, सुरेश्वर आचार्य का जो वार्तिक है उसके साथ तभी आपका विरोध हो गया, विरोध हो गया। इति आशंक्य, ऐसी आशंका करके। तद विवक्षा अनभिज्ञस्य इदम चोद्यम, जो ऐसा बोलता वो जानता नहीं हो, वेदांत को समझता नहीं हो, अभी तक ठीक से वो समझा नहीं है ना, ये कह रहे। इसलिए तद विवक्षा अनभिज्ञ, तस्य विवक्षा, किसकी विवक्षा? सुरेश्वराचार्य की जो विवक्षा है, विवक्षा क्या? वक्तुम इच्छा विवक्षा, हाँ, उसका जो तात्पर्य है ना उसको कहते हैं विवक्षा। इसलिए सुरेश्वराचार्य भगवान की जो विवक्षा है ना वार्तिक में, उसका कोई नहीं जानने वाला, अनभिज्ञ है, उसकी ये शंका हो सकती। इदम चोद्यम, चोद्य का अर्थ आक्षेप, वो आक्षेप करेगा, ओके कि नहीं? इति परिहरति, इस अभिप्राय से पहले वार्तिक को दिखा रहे हैं और वार्तिक का तात्पर्य उसको भी आगे दिखाएंगे। तो 11वां श्लोक देख लीजिए, ये वार्तिक है बृहदारण्यक उपनिषद के ऊपर। पराग अर्थ प्रमेयेषु या फलत्वेन सम्मता संबित सेवेह मेयोर्थो, संबित सेवेह मेयोर्थो वेदांतोक्ति प्रमाणतः, वेदांतोक्ति प्रमाणतः। हाँ, ये वार्तिक है, वार्तिक। हाँ, तो वार्तिक में लिखते हैं सुरेश्वराचार्य, बोलते हैं पराग अर्थ प्रमेयेषु। तो फलत्वेन सम्मता या संबित, ऐसा अन्वय है ना? पहले आधे का अन्वय कर लो। पराग अर्थ प्रमेयेषु फलत्वेन सम्मता या संबित, इतने का पहले अर्थ समझना पड़ेगा है ना, तब आगे बढ़ेंगे। तो बोल दिया कि प्रमेय दो प्रकार के होते हैं। प्रमेय कितने प्रकार के हैं? दो। प्रमेय शब्द को पहले समझ लो, प्रमेय क्या होता है? प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान, प्रमा क्या है? यथार्थ ज्ञान को प्रमा बोलते हैं। जो वस्तु जैसी है उस प्रकार यदि समझेंगे तो उस ज्ञान को कहा जाएगा प्रमा, समझ में ना, यथार्थ ज्ञान को है ना। सर्प को सर्प समझा तो प्रमा हो गई, रस्सी को सर्प समझ लिया तो क्या होगा? अप्रमा हो गई, आगे कि नहीं समझ में? तो प्रमा का अर्थ यथार्थ ज्ञान, हो गई कि नहीं? तो जो वस्तु जैसी है, तो वस्तु कितने प्रकार की है? दो प्रकार समझ लो है ना, एक पारमार्थिक हो गया और दूसरा क्या है? व्यवहारिक समझ लो, और क्या है दूसरा? क्या है? व्यवहारिक। तो ये जगत कैसा है, जागृत कैसा है, ये व्यवहारिक हो गया। क्या हो गया? व्यवहारिक हो गया है ना। इसको भी सत्य समझते हैं, क्या समझते हैं? सत्य समझ, सत्य सत्य। कब तक सत्य होगा? जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं है तब तक ये सत्य भासेगा कि नहीं भासेगा? भासेगा ना। इसलिए इसको भी सत्य कह दिया। और वो ब्रह्म कैसा है? सत्य है कि सत्य का सत्य है? हाँ, सत्य से सत्यम परम धीम है कि नहीं? भागवत में आया ना, वो सत्य का भी सत्य, सत्य का सत्य, मतलब कितने सत्य हुए? सत्य तो एक ही है, लेकिन व्यवहार को भी सत्य इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बिना इसका बात नहीं होगा। आगे समझो मैंने, ये समझाना पड़ता है ना, कभी कभी है ना मानना पड़ता है, समझाने के लिए, समझने के लिए ही मानना पड़ता है। इसलिए हाँ तो सत्ता तो एक ही है, सत्ता तो वेदांत में अनेक सत्ता नहीं, एक ही सत्ता है वेदांत में, एक ही सत्ता है। लेकिन एक ही सत्ता ये बात सबको कहाँ समझ में आती, नहीं आती है, है ना। जो समझ में जिसको आता हो वो होगा उत्कृष्ट अधिकारी, उत्तम अधिकारी होगा कि नहीं। इसलिए उत्तम अधिकारी जो है ना उसके लिए एक ही सत्ता हो गई, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या बोलेंगे, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो एक ही ब्रह्म हुआ, एक ही सत्ता है, बस दो नहीं है, है कि नहीं समझ में। इसलिए सर्वम खलु इदम ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता एक ही हुई। लेकिन भाई ये बात कहाँ समझ में आती है सबको, ये खा रहे हैं पी रहे हैं और ये भी ब्रह्म कैसे होगा भाई, हो गए कि नहीं। तो मान लो कि ये भी सत्य है, मान लो कि क्या है, ये व्यवहार है, इसलिए व्यवहारिक सत्ता आ गई, एक पारमार्थिक सत्ता में एक व्यवहारिक सत्ता आ गई, है ना। इसके व्यवहारिक को नहीं बोलेंगे, प्रातिभाषिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ। इसलिए प्रातिभाषिक सत्ता जो बोलते हैं ना, ये किस लिए बोलते हैं, ये मध्यम अधिकारी के लिए, व्यवहारिक नहीं समझना। इसलिए दो सत्ता आ गई, एक पारमार्थिक सत्ता, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जितने ही भास रहे हैं वो कैसा है, प्रातिभाषिक मिथ्या हो गया। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या हो गए, तो कितने सत्ता हुई, दो सत्ता हुई ना, एक पारमार्थिक सत्ता, उसे अतिरिक्त जो भासेगा वो प्रातिभाषिक सत्ता, दो सत्ता हो गई। ये किस अधिकारी के लिए, हाँ मध्यम अधिकारी के लिए दो सत्ता है, एक पारमार्थिक सत्ता, एक पर्दा है, बाकी सब चित्र है। इसी अगर एक ब्रह्म हो गया पारमार्थिक सत्ता पर्दा, बाकी जितने भी कैसे हैं, प्रातिभाषी चित्र है, इसलिए स्वप्न भी चित्र हुआ और जागृत भी चित्र हो गए, दो हो गए कि नहीं हो गए, आगे समझ में ना। लेकिन भाई ये बात भी सबको समझ में नहीं आती है, है कि नहीं भाई। स्वप्न का लड्डू भले ही मिथ्या हो, लेकिन दुकान में खरीद करके खाते हैं, बना करके खाते हैं, ये भी कैसे मिथ्या होगा, नहीं हो सकता है। तो ये बात भी समझ में नहीं आती है, है कि नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए है ना, तो मान लो कि व्यवहारिक है ये सपना, क्या होगा, प्रातिभाषिक हो गया, है ना। सपना का लड्डू क्या होगा, प्रातिभाषिक, और दुकान का लड्डू क्या हुआ, व्यवहारिक। तो ये कौन सा अधिकारी होगा, हाँ है ना, मंदा हो जाएगा, हाँ। वो क्या है आप समझ लो, है ना, उत्तम मध्यम और मंद। तो मंद अधिकारी के लिए तीन सप्ताह होती है, मध्यम अधिकारी के लिए दो सप्ताह होती है, उत्तम अधिकारी के लिए एक सप्ताह होती है। इसलिए जैसा अधिकारी मिलता है ऐसा शास्त्र बोल देता है, इसलिए कोई विरोध नहीं है, आगे समझ में ना। इसलिए दो सत्य हो गया, है ना, किस अधिकारी के लिए, मंद अधिकारी के लिए। इसलिए ब्रह्म तो सत्य है ही, है ना, और व्यवहारिक भी क्या है, सत्य है। इसलिए व्यवहारिक का ज्ञान को भी प्रमा बोलते हैं, आ गया, और ब्रह्म का ज्ञान को भी प्रमा बोलते हैं। इसलिए प्रमेय कितने हुए, दो हो गए, यथार्थ ज्ञान का विषय एक हो गया ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि जो हो रहा है, और ये घट है, पट है, मठ है, सर्प को सर्प समझना, ये हो गया अभी यथार्थ ज्ञान, प्रमा हो गया। इसलिए प्रमेय ये बोलते हैं, देखो इसलिए प्रमेय दो हो गए कि नहीं, एक आत्मा ब्रह्म हो गया पारमार्थिक, और दूसरा कौन हो गया, अनात्मा। तो अनात्मा भी प्रमेय है, आ गया, ये कह रहा, देखो पराग अर्थ प्रमेय, पराग अर्थ कौन हो गया, अपने से बाहर, अपने से जो बाहर हो गया ना अनात्मा, किसके बाहर हुआ, अरे आत्मा से, आत्मा से बाहर कौन है, कोई है, आत्मा से बाहर कोई नहीं है, बराबर ना, आत्मा से बाहर कोई नहीं है भाई, है ना। फिर भी जो है ना शरीर में अहम बुद्धि कर लोगे तो बाहर ही बाहर हुआ, और क्या हुआ, अरे भाई शरीर से बाहर है ना, तो क्या हो गया, सब हाँ, बाहर हो गए कि नहीं हो गए। इसलिए बोलते हैं परागर्थ, परागर्थ का समझ लो अनात्मा, परागर्थ कौन हो गया, अनात्मा। तो आत्मा से अतिरिक्त जो अनात्मा हो गया वो भी क्या है, प्रमेय पराग अर्थ प्रमेयेषु है ना, या फलत्वेन सम्मता संबित है कि नहीं। तो प्रमेय हो गया घटपटादि, तो घटपटादि में भी संबित है ज्ञान है ना, तो वो क्या है, फल है, वो फल है। ये कौन बोल रहे हैं, सुरेशाचार्य, ये बड़ा रहस्य है, इसका रहस्य आगे बता रहे हैं, पहले समझ लो। तो सा इह मेयो अर्थो वेदांतोक्ति प्रमाणतः, वेदांत की जो उक्ति है, उक्ति का अर्थ वचन, वचनमिति उक्ति मतलब वाक्य, वेदांत से होने वाला जो वाक्य है वो हो गया प्रमाण। वेदांत वाक्य क्या है, प्रमाण। तो वेदांत प्रमाण के द्वारा जो कहा गया अर्थ वो हो गया मेय, हो गया कि नहीं। इसलिए वो जो संभित जो ब्रह्म चैतन्य है वो हो गया फल, इसलिए विरोध हो गया कि नहीं भाई, विरोध हो गया ना। आपने तो बोला पहले चिदाभास को फल, लेकिन सुरेश राजा जो संबित को कह दिया, ब्रह्म चेतन को फल बोल दिया, तो दोनों में परस्पर विरोध हो गया कि नहीं हो गया। फिर हम किस बात को मानेंगे, तुम्हारी बात को मानेंगे भारतीय तीर्थ, तुम्हारी बात को मानेंगे कि हम सुरेश्वराचार्य की बात को मानेंगे, है ना। तो ये इसलिए शंका उनको उठ रही है। इसका विचार हम जो है कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।